भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानकिमिरात् हरे कृष्ण कृष्ण के जन्म का महोत्सव यानी जन्माष्टमी मनाने वाले और एक भक्त बहुत आतुरता से एक ऐसी जो दिन है उसकी राह देखता है और अगर हमारे अंदर वो उत्सुकता नहीं है तो कम से कम जब ऐसे भक्तों के बारे में सुनते हैं जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने की उत्सुकता थी तो धीरे धीरे एक चेतना बना सकते हैं, एक ऐसा मूड बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी हम तैयारी कर सकें। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में परीक्षित महाराज जब भगवान श्री कृष्ण की लीला की ओर पहुंच रहे हैं, दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के सारे लीलाओं का वर्णन है, नवा स्कंद हो चुका है यानी कम से कम 7 दिन की जो अवधि है उनकी आयु की उसमें निश्चित रूप से 4-5 दिन तो गया हुआ है, दशम स्कंद थोड़ा लंबा है, उसके बाद 11-12 तो निश्चित रूप से कम 4 या 5 दिन हुआ है और 2 दिन बाकी है और कोई व्यक्ति अगर उस स्थिति में हो कि बस 2 दिन बाकी है मृत्यु में तो शायद अपने बारे में ज्यादा सोचने लगेगा। पर परीक्षित महाराज इतने उत्सुक हैं कृष्ण के बारे में सुनने में और कहते हैं, ये भी कहते हैं कि विस्तृत रूप से आप बताइए, उसमें एक शॉर्टकट मत कीजिए, सुंदर गोस्वामी कहते हैं। और उनके प्रश्न और आचार्य के तात्पर्य उसमें बताते हैं कि क्यों भगवान की लीला वो सुनने में आतुर, खास करके भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनने में। दशम स्कंद की शुरुआत में परीक्षित महाराज का प्रथम श्लोक है, वो कहते हैं श्री राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्योः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परम अद्भुतम्। राजा परीक्षित ने कहा हे प्रभु यानी सुखदेव गोस्वामी, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। इससे पहले विस्तृत रूप से सूर्य वंश के बारे में जहां प्रभु रामचंद्र का अवतरण हुआ और संक्षिप्त रूप से चंद्र वंश के बारे में जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी ने बताया। जनरली साधारणतः भगवान क्षत्रिय वंश में अवतरित हो गए क्योंकि कहते हैं उनके अवतरित का कारण गीता में बताया, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्टता, शत्रुओं का विनाश करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए। तो साधारणतः वो क्षत्रिय वंश में अवतरित होते हैं।
दो वंश हैं प्रमुख क्षत्रियो में, सूर्य वंश और चंद्र वंश, जहां दोनों में भगवान अवतरित हुए, प्रभु रामचंद्र के रूप में और कृष्ण के रूप में। क्षत्रिय वंश का उद्देश्य ये है, उपाय समझाते हैं, क्षत्रिय मतलब क्या, क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, क्षति यानी हानि और त्रायते मतलब उसे बचाना। तो क्षत्रिय का धर्म है कि हानि से बचाए अपने प्रजा को, और किस चीज की हानि, या संपत्ति की हानि, या जीवन की हानि। गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सेविंग द कंडीशन सोल फ्रॉम द बॉन्डेज टू लस्ट। क्षत्रिय का कर्तव्य था कि उनके नियंत्रण में जितने प्रजा हैं उनको काम के बंधन में पड़कर मनुष्य जीवन नहीं खो जाना चाहिए, उससे संरक्षण करना क्षत्रिय का धर्म था। धर्म का स्थापित करें ताकि लोग काम क्रोध इत्यादि के वश में न पड़ जाए और अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ न गवा दे। इसीलिए साधारणतः भगवान क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर अवतरित होकर अपनी लीला करते थे। तो आपने ऑलरेडी वर्णन किया है ये दोनों वंशों का। अब कहते हैं, यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तमा तत्रां सेनावीरणस्य विष्णु वीर्याणि शंसना। हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं, अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उनके अंदर कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे, जितने सारे भगवान के अलग अलग अवतार हुए, एतच अंश भगवान के अंश हैं या उनके अंशों के अंश यानी कला, और अवतारी जो हैं वो अंततः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कहते हैं जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं उनके अंदर सारे विष्णु तत्व आ जाते हैं, तो अब उस कृष्ण उनके प्रथम विस्तृत रूप यानी बलराम जी, इन दोनों का आप कृपा करके वर्णन कीजिए। क्यों क्यों महाराज परीक्षित इतने आतुर हैं सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण की कथा को। कहते हैं, अवतीर्य यदोर वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। परमात्मा भगवान कृष्ण जो विराट जगत के कारण है यदुवंश में प्रकट हुए, आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र के आदि लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। खास करके क्यों नहीं, क्योंकि मालूम था भगवान, खास करके भगवान श्री कृष्ण की स्थिति क्या है परीक्षित महाराज को मालूम था। तो कहते हैं, इस कथा में अब थोड़ा सारांश में मत बताइए मुझे, अभी मुझे विस्तृत रूप से बताइए, शुरू से लेकर वृंदावन लीला से लेकर मथुरा लीला से लेकर द्वारका लीला तक संपूर्ण रूप से सुनाइए। जो जो मैं प्रश्न करने वाला हूं उसका उत्तर दीजिए, और जो मैं नहीं प्रश्न किया हूं उन प्रश्नों का भी उत्तर दे दीजिए, कुछ भूल गया हूं तो वो भी आप बता दीजिए मुझे। क्यों फिर बता रहे हैं, तीन चार श्लोकों में बताते हैं क्यों वो इतने आतुर हैं सुनने के लिए। निवृत्त तर्षेर उपगीयमाना भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा क उत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमार विरज्य बिना पशुघ्ना। कहते हैं, भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु के गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव भगवान की महिमा का सुनना कसाई यानी पशुघाती या अपने को मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त कौन नहीं चाहेगा। तो यहां बताते हैं, निवृत्त तर्शयर उपगीयमाना, तर्शयर तर्श तृष्णा, पूरे भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति तृष्णा, तृष्णा मतलब भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रूप से लिप्त है, और ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं है। पर निवृत्त तर्शय, जो ऐसे तृष्णा से निवृत्त है, ऐसे लोगों से गाया हुआ ये जो कृष्ण कथा है वो सुनने योग्य है। किस व्यक्ति से हमको सुनना है वो भी बताया गया है। निवृत्त तर्शय, जो भौतिक तृष्णा से मुक्त है। दो प्रकार के लोग मुक्त हैं, एक है ज्ञानी जो जानता है कि आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति मुझे ब्रह्म लोक ऊपर से लेकर नीचे तक भौतिक संसार जो है दुखालय अशाश्वत है, वो भी तृष्णा रहित है। पर ऐसे ज्ञानी से सुनने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि इस भौतिक संसार से परे भगवत धाम है, वहां भगवान निवास करते हैं और भगवान के साथ भक्तों की नित्य लीला वहां जारी है, उन्हें विश्वास नहीं। पर ऐसे निवृत्त तर्शयर के द्वारा सुनना नहीं है, उनसे नहीं सुनना है। निवृत्त तर्शयर उपगीयमाना, उपगीयमाना मतलब निरंतर जो गाते हैं भगवान की लीलाओं का के बारे में, सततम कीर्तयन्तो मां यतंतश्च दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। महात्मा, ऐसे महात्मा सततम कीर्तयन्तो मां, भगवान की कीर्तिगान सतत करते हैं, तो भक्तों के शुद्ध भक्तों के मुखारवन से सुनी हुई जो कथा है उसको आप सुनाइए। निवृत्त तर्शे उपगीयमाना, उपगीयमाना अभी भी भारत में, आज भी हम लोग थोड़े दिन पहले जगन्नाथपुरी गए थे। जगन्नाथपुरी में पता नहीं आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, 6 लाख लोग एकत्रित हुए थे उस दिन, 6 लाख। और ग्रैंड रोड जो जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक 3 किलोमीटर का रास्ता है, और उसमें सिर्फ सर ही सर दिख रहा, काला समुद्र जैसे, खासकर थोड़ा ऊपर से अगर देखे तो सिर्फ सर ही सर दिख रहा था पास, एकदम पैक्ड। और सब लोग, मतलब कितने लोग बेहोश होकर गिर रहे, और बारिश आई ऊपर से, बारिश आए तो सब हरी बोल चलाना, बहुत खुश हो गया हूं, ऐसा मुसलधार बारिश। और जब बारिश आया तो मैं ऊपर से देख रहा था, जहां पब्लिक खड़ी थी वहां से धुआं निकल रहा था, ऐसा मतलब उतना पसीना छोड़ रहा था, और ऊपर से बारिश आई तो सब लोग जो सांस ले रहे थे धुआं जैसा निकल रहा था। ऐसे कितने लोग, बूढ़े लोग, स्त्रियां, बच्चे, एकदम कोई भी, और कोई व्यक्ति अश्रद्धालु व्यक्ति कभी सोचेगा नहीं वहां जाने के लिए, खतरा है, जान के लिए खतरा है, फिर भी किसी तरह से आते हैं वो कुंभ मेला में। आज भी कहीं भागवत सप्ताह या पड़ा होता है तो लोग हजारों की संख्या में एकत्रित होते हैं। उपगीयमाना, ये संस्कृति है भारत में कि भगवान के बारे में सुनने के लिए लोग एकत्रित होते हैं श्रद्धापूर्वक। पर किस व्यक्ति से सुनते वो बोलो जरूर। निवृत्त तर्शय उपगीयमान, प्रोफेशनल मतलब एक व्यवसाय के रूप में अगर कोई भागवत कथा करे तो तृष्णा है तो उसमें शुद्धता नहीं रहेगी। क्यों ऐसा नहीं रहता? क्योंकि अगर
कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भागवत सत्ता करता हूं जी, 10,000 चार्ज होता है, बस ज्यादा नहीं, नहीं मैं अपने हाथ से नहीं लेता हूं, संस्था के लिए चला जाता है, पर 10,000 चार्ज होता है 7 दिन का। अगर 10,000 चार्ज होता है तो अगले बार उसे बुलाने के लिए लोग सोचेंगे, 10,000 दे रहे हैं तो व्यक्ति हमको उसके अनुसार कुछ देगा कि नहीं, और उसके ऊपर भी दबाव रहता है, अगर 10,000 दे पैसा दे रहा है मुझे और मैं अगर कथा ठीक से नहीं करूं और सिर्फ 400 पब्लिक आए तो अगले बार मेरे को 1,000 रुपया देके भी बुलाएंगे नहीं लोग, तो एक तरह का टेंशन रहता है, चिंता रहता है उसको। तो स्वाभाविक है कि वो पब्लिक को आकर्षित करने के लिए उनको जो चाहिए वो बताएगा, थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा चुटकुले, थोड़ा अच्छा भजन कीर्तन, प्रोफेशनल फर्स्ट क्लास, क्योंकि लोग अगर आएंगे नहीं तो मार्केट में उसका डिमांड जो है बढ़ेगा नहीं। एक बार अगर पैसा ले लिया तो वो जो बोलता है उसको करना पड़ता है उसको, बोले महाराज आज थोड़ा मूड अलग है, आज रात लीला सुना, ठीक है जी, उनसे पूछना पड़ता है कौन सा चीज सुना आज, बोले आज प्रहलाद कुहार कथा सुना, तो इस तरह से निवृत्त विषय मतलब मुझे पब्लिक को खुश करने का या नहीं खुश करने का लेना देना नहीं है, उपगीय माना वो कथा करता है भगवान और गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए, पब्लिक को अच्छा लगे या ना लगे उसे कुछ लेना देना नहीं, ऑफ कोर्स वो कोशिश करता है कि ऐसे अच्छी तरह से सुनाए ताकि लोग उसको समझ पाए, लोग उसको उतार पाए अपने जीवन में, सेवा की भावना से वो कहता है, पर उसे ये चिंता नहीं है कि 1,000 लोग सुनेंगे, लाखों लोग सुनेंगे और मेरा यश बढ़ेगा, कि ये महाराज जी जब आते ना लाख लोग एकत्रित होते, उसे जरूरत नहीं है। एको भी गुणवान पुत्रो निर्गुणे न सते न किम एक चंद्र स्तमोहंती न चारा सहस्र शर। प्रभुपाद जी जब प्रवचन देने के लिए आते थे और कुछ लोग आए नहीं आए, वो बोलते थे एको भी गुणवान पुत्रो, चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक गुणवान पुत्र हो तो अच्छा है, निर्गुणे न सते न किम, निर्गुण ऐसे 100 बच्चे पैदा करके क्या फायदा, कौरव जैसे, बोले 5 पांडव अच्छा है कम से कम। एक चंद्र स्तमोहंती न च तारा सहस्रश, एक चंद्रमा जो है वो अंधकार को दूर करती है पर 1,000 तारे जो है नहीं दूर कर सकते। तो प्रभुपाद कहते थे मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, परंपरा की प्रसन्नता के लिए मैं कह रहा हूं और लोगों की भलाई, जो उनको जरूरत है वो मैं सुना रहा हूं, उनको जो चाहिए वो मैं नहीं सुनाने वाला, जिनको सुनना है सुनने दो। तो निवृत्त तर्शे उपगीय माना, ऐसे व्यक्ति से सुनना बहुत जरूरी है जो कृष्ण कथा भगवान की प्रसन्नता के लिए और हमारी आत्मा की तृप्ति के लिए दे रहे हो, अपने इंद्रियों की या मन की तृप्ति के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं दे रहे। निवृत्त तर्शे उपगीय माना भवौषधा, ये कृष्ण कथा जो है भव औषधि, भवरोग को दूर करने वाली औषधि है। जब ऐसे कथा सुनते हैं तो भव औषधि, ये औषधि जो है, साधारण जो औषधि डॉक्टर लोग देते हैं वो मुंह से पिया जाता है, पर ये औषधि जो है कान से पिया जाता है, और मुंह से पिया जाता है वो पेट में जाता है, और जो कान से पीते हैं वो हृदय में जाता है, और हृदय में जो बीमारी है भवरोग, भवरोग का कारण क्या है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, तो भवौषधा श्रोत्र मनोभिराम। और ये जब सुनते हैं कि भवौषधि जब कर्णों के द्वारा प्रवेश करके हृदय में कर्णरंध्रेन प्रविष्ट, कर्णरंध्रेन कर्ण के रंध्र से प्रवेश करके हृदय में जाके मनोभिराम, मन अभिराम, मन तृप्त हो जाता है। कम उत्तम श्लोक गुण अनुवादा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुणों की वर्णन नहीं सुनेगा,
पुमान विरज्येत, ऐसा व्यक्ति जो नहीं करेगा बिना पशुगुना, जो पशु को मारने वाला है वो व्यक्ति इस कथा में रुचि नहीं रखेगा। तो पशुगुना जो पशु को मारते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय बहुत कठोर है, मर्सी या दया जो है, दया पर चली जाती है जब अपनी जीवा की लालसा के लिए लोग एक पशु को काटने के लिए तैयार। तो पशुगुना जो पशु को मारता है, जिसका हृदय एकदम पत्थर के जैसा है, वो व्यक्ति को इस कथा में कोई रुचि नहीं है। तो एक पशुगुना तो वो है। दूसरा भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्त है और कर्म कांड के लिए यज्ञों में पशुओं की हत्या करता है, ऐसे व्यक्ति जो है इसकी बहुत सारे पशुओं को काट के यज्ञ में आहुति देते, किस लिए? अगर ऐसा पशु के ये किया तो ऐसा फल मिलेगा, भोग मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। तो जो कर्म कांड में लगे हुए हैं उनको कृष्ण कथा भवरोग से दूर होने की जो औषधि है, भव औषधि, इसमें रुचि नहीं है। और तीसरा पशुगुनाथ कौन है? पशु यानी जीव औसो, मतलब जीव भी, तो अपने आप की जो आत्महत्या करना चाहता है, जो भगवान में लीन होना चाहता है, भगवान बनने की इच्छा है उसके, भगवान की कथा सुनने की इच्छा नहीं, खुद भगवान बनने की इच्छा उसको, सही पशु बड़ो दुराचार। तो ये तीन प्रकार के पशुगुना, ऐसे लोगों को एक मायावादी, जिनको भगवान में विश्वास ही नहीं, वो कहते हैं कि भगवान का रूप माया है, भगवान का लीला माया है, ऐसे व्यक्ति को क्यों सुनेगा, उसमें कुछ रस ही नहीं है उसके लिए। जैसा गन्ने का रस पहले बार डालो मशीन के अंदर, एक गिलास निकलेगा, फिर उसको घुमा के दो बार डालो दूसरा बार, तो सवा थोड़ा सा आधा गिलास से थोड़ा कम निकलेगा जूस। आपने देखा होगा गन्ने का रस, बाद में चार वो निकाल के उसको चार करते हैं, चार करके मशीन में घुसाते हैं, फिर उसको ऐसा, तो उसमें से चार बूंद निकलता है, उसके बाद चार को आठ करते हैं घुमा के, और फिर घुसा के वो हैंडल के ऊपर दो लोग चढ़ के वो इसको दबाते हैं, दबाते हैं तो उसमें से चार बूंद निकलता है, उसमें से ऊपर से पानी डाल के थोड़ा निकालते हैं, फिर आठ को सोलह करते हैं, फिर उनके सारे परिवार के लोग हैंडल के ऊपर दबाते हैं और उसमें से कुछ नहीं निकलता बाद में, बाद में उसको एकदम ऐसा पाउडर जैसा हो जाता है वो गन्ने, उसको उठा के बाहर फेंक देते। फेंकने के बाद वो बकरी आती है और उसको शायद उसके अंदर कोई जूस मिल जाए, क्या मिलेगा उसके अंदर, उसमें कुछ है ही नहीं, रस निरस है। इसी तरह से जिनको एक्चुअली भगवान का रूप, भगवान के नाम गुण लीला में विश्वास ही नहीं है, वो क्या इसमें क्या रस है, उसमें कुछ है ही नहीं, रस राज कृष्ण के ऊपर विश्वास ही नहीं है उसको, तो क्या रस मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को पशुगुना, ऐसे व्यक्ति को रस नहीं, भोगेश्वर्य कर्मकांडी व्यक्ति को रस नहीं है, और जो दयाहीन व्यक्ति पशु की हत्या करता है उसको तो है ही नहीं। इसलिए कम से कम चार नियमों का पालन करके सोलह माला जप करके सुनने को आओ बोलते हैं हम लोग। तो पुमान विरज्येत बिना पशुगुना, तो इस तरह से बोलते हैं। अब मैं उस भवौषधि, क्योंकि मैं अभी शरीर छोड़ने वाला हूं दो दिन में, अब मुझे इस अमृत का पान करना जरूरी है। और फिर कहते हैं और क्यों सुनना है, क्योंकि खास करके मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे परिवार के सारे जो वंशज हैं, वंश के पीढ़ियों जो है उनका सबका उन्होंने रक्षा किया है ऑलरेडी। जैसा कोई हम लोग कहते हैं ना फैमिली डॉक्टर, हर एक अपना अपना फैमिली डॉक्टर होता है। हमारे परिवार, हमारे दादाजी का भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया, मेरे पिताजी का भी वही डॉक्टर ट्रीटमेंट किए, अभी 80 साल के, हमारा भी ट्रीटमेंट, हमारे बच्चे का भी वही ट्रीटमेंट करते, हमारे फैमिली डॉक्टर है वो। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है परीक्षित महाराज कहते हैं तो हमारी फैमिली के संरक्षक है, कहते हैं पिता महा में समरे मरंजयी देवव्रत आद्यादि रथे तिमिंगलय दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरण वत्स पदम स्मयत्प्लवा। कहते हैं कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर मेरे दादा अर्जुन तथा अन्यों ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार कर लिया जिसमें भीष्म देव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती। मेरे पितामहों ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस दुर्लक्ष सागर को इतनी सरलता से पार किया मानो कोई गोखुर का चिन्ह हो। पितामह में मेरे पितामह परीक्षित महाराज थे अभिमन्यु के पुत्र और अभिमन्यु के पिता थे अर्जुन यानी उनके दादाजी परीक्षित महाराज के दादाजी अर्जुन थे। पितामह पितामह में मतलब सारे पांडव समरे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अमरं जयहि उनके सामने कौन खड़े थे अमरं जयहि देवताओं को भी हराने वाले देवव्रत आद्या देवव्रत यानी भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे महान महान लोग सामने खड़े थे। उनके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसे महारथी लोग सामने खड़े हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जिन्होंने देवताओं को रणभूमि में हराया है। भीष्म पितामह तो परशुराम जी को भी लड़का रहे थे और उनको भी हरा दिए थे मतलब कोई हारा नहीं कोई जीता नहीं। ऐसा व्यक्ति परशुराम जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया उस परशुराम भीष्म पितामह को हरा नहीं पाए। ऐसे क्षत्रिय ऐसे भीष्म पितामह सामने खड़े हैं तो अर्जुन ये पांडव क्या है उनके सामने। अतिरथी तिमिंगल तिमिंगल वैदिक वाङ्मय में ये वर्णन है तिमिंगल नाम का एक मछली है वो इतना बड़ा है कि बड़े बड़े जो वेल है ना 90 फुट का उसको भी निकल जाता है ऐसे मतलब जैसा हम लोग एक क्या बोलते हैं मूंगफली के दाना को जैसा निकल जाते हैं ऐसा तिमिंगल जो है बड़े बड़े शार्क या बड़े बड़े वेल फिश को ऐसे निकल जाता है 5-10 एक साथ। तो देवव्रत आद्यादि रथी तिमिंगल ऐसे लोग दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कौरव की सेना एक सागर के सामने सागर जैसे सामने खड़ी है और ऐसी सागर नहीं जैसे जगन्नाथपुरी में हमने देखा लोगों का सागर वो तो मामूली लोग थे गांव के लोग पर ये कैसा सागर एक एक भी अतिरथी एक एक भी महारथी और शक्तिशाली योद्धा लोग ऐसा बड़ा सागर और उस सागर में अगर सबसे पहले सागर को पार कर पाना मुश्किल है पर ये ऐसा सागर नहीं ऐसा सागर जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां हों उसमें एक छोटा सा व्यक्ति बोलेगा कि मैं यहां से वहां तैर के जाऊंगा। सबसे पहले समुद्र और उसमें भी जो बड़ी बड़ी मछलियां पड़ी हो मुंह खोल के खड़ी हो आ जाओ राह देख रही हो क्या व्हाट इज द चांस क्या उम्मीद है उसको पार करने का। तो देवव्रत आद्यादि रथे तिमिंगले दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम इतना तकलीफ पार कर पाना बहुत ही मुश्किल। मम माया दुरत्यया भगवान कहते हैं ना मम माया दुरत्यया इसी तरह से दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम पर क्या किया हमारे पितामह ने कृत्वा अतरन वत्स पदम स्मयत्प्लवा पर हमारे पांडव हमारे दादाओं ने ऐसे पार किया मानो गो बछड़े का खुर बछड़े के पैर में बारिश के दिनों में बछड़ा अगर एक पैर रखे तो इतना छोटा सा एक चुंबू में पानी जिसको बोलते इतना उसको आराम से बच्चा भी पार कर जाता है। ऐसे आसानी से हमारे पितामह ने पार किया क्यों वत्स पदम स्मयत् प्लवा भगवान के चरण कमल का नाव का उन्होंने आश्रय लिया था इसीलिए समुद्र को पार कर दिया। समाश्रिताये पदपल्लवं प्लवं महत्पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदं परम पदं 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 यत् विपदां न तेषां। भागवत बताता है समाश्रिताये पदपल्लवं प्लवं, जिसने भगवान के चरण कमल का नाव का आश्रय ले लिया है उसके लिए ये भाव सागर को पार कर पाना जो स्वाभाविक रूप से नामुमकिन है। छोटे मोटे सागर को पार नहीं कर पाते हम लोग, तो भाव सागर को क्या पार करेंगे। पर जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमल के नाव का आश्रय लिया उसके लिए बड़ा आसानी से पार कर पाते। वत्स पदम यय स्मयत् प्लवा, कल हम लोग यही चर्चा कर रहे थे भगवत गीता के प्रथम अध्याय के बारे में। इसी तरह से हमारे जीवन में भी हमारे अनर्थ जो हैं इतने शक्तिशाली हैं, भीष्म द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े सामने खड़े हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि, उन्होंने पूर्ण रूप से हमारे इस शरीर के जो नगर है उसको पकड़ के रखा हुआ है, कैप्चर कर लिया हम लोग, और इनको हराना बहुत मुश्किल है। पर भगवान का आश्रय, नाम का आश्रय, भगवान का आश्रय लेना कैसे, कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो नाम का आश्रय जब हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि आसानी से हम पार कर जाते हैं। अभी हम एक भक्त से चर्चा कर रहे थे और वो एक व्यक्ति बता रहे थे कि कलयुग की परिस्थिति ऐसी है आसानी से आदमी बह जाएगा। हम लोग गंगा गए थे, गंगा इसमें क्या बोलते हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में मैं आपको बता रहा हूं अलकानंदा बहती है, इतनी तेजी से बहती है वहां, इतनी तेजी से बहती है कि एक हमारे भक्त मालूम नहीं था उनको कितना रफ्तार है उस गंगा का, तो वहां बड़ा बड़ा चेन डाला गया और चेन को पकड़ के स्नान कर सकते आदमी, और कस के पकड़ के बांध लेना पड़ेगा और बाद में ऐसा घुसना पड़ेगा गंगा में, ये तो बह जाएगा बस दिखेगा भी नहीं। तो एक भक्त जो थे उनको मालूम नहीं था, उनको लगा कि ठंडा पानी है थोड़ा, एक लोटा ऐसा ऐसे ही लोटा एग्जैक्टली ऐसा स्टील का लोटा लियो, और बोले मैं पानी लूंगा और पानी लेके स्नान करूंगा। तो ऐसा बैठा वो भक्त, ऐसा बैठा, बैठ के उल्टा ऐसा बह रहा था, उसे ऐसा डालने की कोशिश किया, उसे मालूम नहीं रफ्तार कितना है, उड़ गया उसके हाथ से और लोटा कहां गया नहीं मालूम, अंदर चला गया कहीं, और दो सेकंड के अंदर इधर उधर देख रहा है आधा किलोमीटर दूर लोटा बाहर निकला, आधा किलोमीटर दूर वो लोटा ऐसा ठुम करके उधर से कहीं उछल के दूसरा जगह गिरा, फिर से नदी में चला गया, बस दो सेकंड के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा पांच सेकंड, हमको तो दो सेकंड ही लगा क्योंकि हम लोग सोचते ही रहे कहां गया वो लोटा। और उसी में उसी अलकानंदा के अंदर आदमी छोड़ो अगर एक हाथी भी प्रवेश करेगा वो लोटे के समान बह जाएगा, ऐसा प्रवाह। पर बड़े ताज्जुब की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि उसी पानी में आप झुक के देखोगे, थोड़ा ध्यान देखोगे तो इतनी सी छोटी सी मछली कभी ऐसा तैर रही है कभी उल्टे तैर रही है, मतलब प्रवाह ऐसा है पर मछली ऐसा तैर रही है अंदर। अब मछली का वजन कितना और ये लोटा का वजन कितना है, लोटा बह गया पर मछली जो है कभी ऐसे जा रही है कभी उल्टे दिशा में कभी ऐसे दिशा में आराम से वही उसी जगह में घूम रही है। ऐसा कैसा, एक हाथी भी बह जाएगा पर एक मछली जो है वो बहती नहीं, क्यों, क्योंकि हाथी या हम सब जो हैं उसके विरुद्ध जा रहे हैं, पर ये मछली जो है पूर्ण रूप से पानी का आश्रय ले लिए, उस नदी का उसने आश्रय ले लिया, इसलिए वो आराम से घूम रही है उसके अंदर, उसको वो फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से तुरत्यम कौरव सैन्य सागरम कृत्वातरम, वो ये भक्त बता रहे थे कि कलयुग का प्रवाह ऐसा है ना चाहो तो भी इंद्रियों में बॉम्बार्डमेंट, आंखों के द्वारा इतने सारे मन को इधर उधर भटक लेने वाले दृष्टि, हमारे जो
देखने को चीजें मिलती है। अब गांधी जी से आंख करो, बंद करो, नाक बंद करो, मुंह बंद करो, सब बंद करके तो नहीं जा सकते, प्रैक्टिकल नहीं है। प्राण खोला एक थोड़ा समय के लिए टीवी देखो तो कितना बंबड़ है। हमारे मंदिर से खिड़की से मैं देख रहा था दूसरे घर में, मतलब प्रोग्राम नहीं देख रहा था, जब करते करते मेरा आंख वहां गया, देख रहा था 5 सेकंड के अंदर ऐसा अलग 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 चित्र आते रहते, अलग अलग चित्र आते रहता, वो और उसमें भी इतना चैनल सब देखते 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 पिछड़ा पूरा मन अंदर से घुस रहा है पूरा प्रवाह, और कान से भी बहुत सारा प्रवाह अंदर घुस रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मन को क्या बनाए रखे आदमी, पर इस स्थिति में भी किसी तरह से हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी इस हरिनाम का आश्रय लिया है उसके लिए किसी न किसी तरह से भगवान की भक्ति में टिका रहना आसान हो जाता है। सुकृत्वातरण वत्स पदम स्मयत लवा, तो बोलते मेरे पितामह को भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण रूप से आश्रय देकर इस कौरव सैनिक के सागर में जिनमें बड़े बड़े तिमिंगला जैसे मछली विश्व पितामह जैसे थी उसको पार करने में मदद कर दिया। इसीलिए मैं भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनना चाहता हूं। और फिर कहते हैं कृष्ण की तो दूर, मेरे पितामह की दूर की बात, मुझे खुद को उन्होंने रक्षा किया। कैसे? द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टम इदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आत चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। कहते हैं चूंकि मेरी माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, अतः उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया, जो कौरवों तथा पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था और जिसे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट प्राय कर दिया था। द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टम, द्रौण अश्वत्थामा ने जब देखा कि पांडव लोग जीत गए और सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उसने क्या किया, बोला अभी कौरव और पांडवों का एक ही संतान बच गया है और वो है ये परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में है, भले उसको नाश कर दूंगा तो पूरा ये वंश का नाश हो जाएगा। तो उसने एक बच्चे को, निस्सहाय बच्चे जो गर्भ के अंदर है, उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। अब सोचिए ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को नाश कर सकता है, बड़े बड़े ग्रहों को नाश कर सकता है, उस ब्रह्मास्त्र को लेकर एक निस्सहाय बच्चा जो गर्भ के अंदर है उसको मारने के लिए फेंक दिया। अगर आप कल आप सुनेंगे कि कोल्हापुर में एक एरिया के रास्ते के बगल में एक छोटा सा मच्छर है और उसे मारने के लिए अमेरिका की सारी सेना तब तोप लेके आ रही है, वो संपूर्ण अमेरिका के सारे एयरफोर्स, नेवल विंग और आर्मी सब लेकर इस मच्छर को मारने के लिए कोल्हापुर आ रही है। ये आकाशवाणी कोल्हापुर है। आप सोचिए ये कोई मतलब है, एक थोड़ा मच्छर तो कोई भी मार सकता है, पर इसलिए पूरा सेना कहां, एक निस्सहाय गर्भ में बैठा हुआ एक बच्चा पैदा भी नहीं हुआ अभी तक और कहां ब्रह्मास्त्र, कोई मतलब कोई संभावना ही नहीं है उस बच्चड़ को बचने का। इसी तरह से कोई संभावना नहीं, अचूक अस्त्र, अमोघ अस्त्र, ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया था। द्रौण्यस्त्र विप्लुष्ट इदं मदंगम, ये मेरा अंग जो प्रायशः नष्ट हो गया था, संतान बीजं कुरु पांडवाना, कौरव और पांडवों के एक ही संतान रह गया था, वो था परीक्षित। जुगोप कुक्षिम, पर भगवान श्री कृष्ण आज तक ब्रह्मास्त्र वापस कभी नहीं आया, पर जुगोप कुक्षिम भगवान श्री कृष्ण ने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके गत आप्त चक्रो सुदर्शन चक्र लेकर गर्भ में खड़े रहे। आने दो ब्रह्मास्त्र, क्या कोई भी अस्त्र आ जाने दो। एक्चुअली सुदर्शन जो है वो एक ऐसा अस्त्र है उसके सामने कोई अस्त्र, मतलब दिस इज द अल्टीमेट,
जैसा भगवान जो है वो जीवों में सबसे परम है, इसी तरह सारे अस्त्रों में सुदर्शन परम है, उससे बढ़कर कोई आज तक हुआ है ना होगा। जिसके पीछे सुदर्शन पड़ गया उसका हरे कृष्ण, समझ लेना दुर्वास मुनि कोई मालूम है। तो गदा आप्त चक्र, चक्र लेकर भगवान खुद वहां कर खड़े हो गए। मातुश्च मे यह शरणं गता, क्यों? क्योंकि मेरी मां भगवान श्री कृष्ण के शरण ली। नामुमकिन स्थिति से आसानी से मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं कर पाया हो ब्रह्मास्त्र। तो न केवल मेरे पितामह को भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की है, मुझे भी रक्षा किया, वैयक्तिक रूप से उन्होंने रक्षा किया। और अंत में कहते हैं कि क्यों मुझे कृष्ण भान, कृष्ण का कथा सुनना चाहता हूं मैं। वीर्याणि तस्य अखिल देह भाजां अंतर्बहिर पुरुष काल रूपे प्रयत् प्रपच्छतो मृत्यु मृतामृतम च माया मनुष्यस्य वदत्व विद्वान। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के भीतर तथा बाहर शाश्वत काल के रूप में तथा परमात्मा तथा विराट रूपों में अपने शक्ति से प्रकट होकर हरेक को क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया। कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे अवगत कीजिए। अभी वो ठीक है, पितामह को बचाए, परीक्षित महाराज को बताए, पर परीक्षित महाराज की चिंता सिर्फ अपनी नहीं है। वो कहते हैं कि प्रभु, सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि वीर्याणि तस्य अखिल देह भाजां, जिस जीव ने भी एक शरीर धारण किया है, यानी हम सब अंतर बहिर पुरुष काल रूपे, अंततः या मृत्यु के रूप में या नित्य जीवन के रूप में भगवान को शरण जाना ही है हमको। जब भगवान की शरण नहीं जाते, वो मृत्यु के रूप में भगवान का चेहरा देखना पड़ता है, उनको शरण जाना पड़ता है। जीवित अगर दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय ऐसा उल्टा प्रणाम करेंगे बस, बट लेटना पड़ेगा आपको निश्चित रूप से। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दंडवत ऐसा प्रणाम करता है मृत्यु से पहले, और तब उस व्यक्ति के लिए अनंत जीव, अनंत जीवन भगवत धाम में प्राप्त होता है, या अंततः मृत्यु के रूप में मृत्यु सर्वहर्षाहम, अंततः शरण जाना ही है, शत प्रतिशत हमको जाना ही है, शरण तो जाना ही है भगवान की। जैसा एक व्यक्ति को सरकार की सेवा करना ही है, स्वेच्छा से करोगे तो ठीक है, अगर स्वेच्छा से नहीं करोगे तो जबरदस्ती आपको जेल के अंदर डाल के पत्थर फोड़ने या दूसरा कुर्सी बना कुछ तो एक सेवा किया जाए। जेल के अंदर या जेल के बाहर सरकार की सेवा करना जरूरी है, क्योंकि हम सरकार के एक अंश हैं। इसी तरह से भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा करना जरूरी है। स्वेच्छा से करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। उनके प्रतिनिधि जो माया है पीछे से लात मार के काम कराएगी, और करना ही पड़ेगा उनको, उसकी शरण जाना ही पड़ेगा। तो चॉइस हमारे पास ये है, स्वेच्छा से खुशी से भगवान की सेवा करें अभी और भगवत धाम में अनंत काल में जाए, या फिर लात खा खा के जबरदस्ती करें और उसके बाद भी बार बार थप्पड़ी पड़ेगी। कामादिनाम कति न कति दा पालिता दुर्निदेशास तेषां जाता मई न करुणा न कृपा नोपता शांति। पर ऐसी माया की सेवा करने से क्या होता है, कामादिनाम काम क्रोध लोभ इत्यादि कति न कति दा, अरे कब से मैं सेवा करते आया हूं, कितने जन्मों से। पालिता कति न कति दा पालिता, पालिता मतलब जो भी बोला यस सर, हां हुजूर, आज तक हमने उसका पालन किया है। दुर्निदे पर कैसा मालिक जो होता है कुछ ऑर्डर देता है, ऐसा करो ऐसा करो, पर ऐसी काम क्रोध इत्यादि जो माया है उसकी सेवा मैंने कितने जन्म जन्मों से की है, पर उनका निर्देश कैसा है, दुर्निदेशा गलत ऑर्डर दे दिए मुझे, ऐसा करो विषय भोग करो ऐसा करो ऐसा करो तुम सुखी हो जाओ।
तेषां जाता, ठीक है मैंने इतना मालिक का सेवा किया, मई न करुणा, करुणा थोड़ा तो करुणा दिखाना चाहिए, बेचारा इतना किया है सोमवार से लेकर शनिवार तक किया है, संडे को तो छुट्टी हो, पर ये जो माया देवी है सोमवार से शनिवार को किया तो बोले संडे को तो मेरा फुल डे सेवा करो, छुट्टी नहीं मिलता, न करुणा एकदम नहीं, न त्रुपा त्रुटि नहीं होती, वो ऐसा नहीं कि अभी रिटायर हो गया पेंशन तो दो, भगवान जैसे मालिक। एक बार आपने कहा कि प्रभु मैं आपकी शरण आना चाहता हूं, आप भूल गए पर वो नहीं भूलेंगे, एक बार आपने थोड़ा बहुत सेवा किया था आप भूल जाएंगे पर वो नहीं भूलते, याद रखते हैं कि एक जन्म में तूने इतना छोटा सा कुछ सेवा किया था वो याद रखते हो, और सारी गलतियां भूल देते, चलो चलो ठीक है छोड़ दो, एक गलती सबसे हो जाता छोड़ दो, सारी गलतियां माफ। और कभी कभी मालिक की हम लोग सेवा करते, पूरा दिन सेवा किया, मालिक बाहर गया हुआ था, हमने पूरा सेवा किया, और जब जिस क्षण मालिक आया उस समय थोड़ा सो गए थे हम लोग, ले पूरा दिन सोता रहता है, पर भगवान ऐसा नहीं है, उनके न होते हुए जो भी काम किया सब अकाउंट में रहता उनका, उनको मालूम है। तो ऐसा मालिक को छोड़कर ऐसा मालिक को क्यों हम शरण जाए, तो ऐसा व्यक्ति के बारे में मैं सुनना चाहता हूं, मुझे उस कथा सुनाइए। इस तरह से फिर कहते हैं नैषाति दुस्सहा क्षुन्नाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजम अच्युतं हरिकथामृतम्। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह बाधा नहीं पहुंचा रही। जो आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है उसके लिए भूख प्यास इत्यादि तकलीफ नहीं देती। परीक्षित महाराज 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, उन्होंने एक बूंद पानी नहीं पिया है, एक दाना खाना नहीं खाया है, एक झपक सोया नहीं, और फिर भी कह रहे विस्तृत रूप से बताइए, शॉर्टकट मत बताइए, बोलते आप मत बोलिए कि भूख है प्यास है इसीलिए मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, नहीं नहीं मुझे भूख और प्यास नहीं एकदम नहीं सता रही है, क्यों, क्योंकि पिबंतम हरि कथा अमृतम, क्योंकि आप हरि कथा सुना रहे हो और वो आत्मा को तृप्त कर रहा है, मेरी आत्मा जो है वो तृप्त हो जा रही है और मुझे कोई चिंता नहीं शरीर की, चिंता मत करो आप बोलते जाओ। क्यों बोल रहे परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज 7 दिन पहले थोड़े प्यासे थे और उन्हें पानी नहीं मिला और उनको क्रोध आ गया जब शमिक ऋषि ने पानी नहीं दिया, और भगवान की इच्छा से उन्होंने एक ऐसे सांप को गले में डाल दिया और श्रृंगी उसके बेटे ने श्राप दे दिया और श्राप के कारण अभी हरिकथामृत का पान हो रहा है। बोले आज उस समय मैं कुछ घंटे पानी नहीं पिया था तो मैं इतना विचलित हो गया था, पर आज 7-6 दिन से पानी नहीं पिया हूं, भूख है प्यास है और ये है, पर यह मुझे तकलीफ नहीं दे रही, क्यों, क्योंकि हरिकथामृत का पान कर रहा हूं। संख्या पूर्वक नाम गान नटिभी काला दसानी कृत निद्राहार विहार काल विजितो चात्यंत दीनौचयो। ऑफ कोर्स हम उस स्तर पर नहीं है, पर कम से कम हमें समझना चाहिए कि हरि कथामृत जो है ये इसलिए हमें रेगुलरली सुनना, नित्यम भागवत सेवा, ताकि मृत्यु के द्वार पर जब हम आएंगे उस समय बहुत मुश्किल है,
बहुत तकलीफ होता है, उस समय मन हरि कथा में नहीं लग सकता, हरि स्मरण में नहीं लग सकता। अगर अभी से हम उसकी अभ्यास नहीं करेंगे, और इस तरह से सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते और प्रसन्न होकर कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजर्षि में श्रेष्ठ, चूंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। चूंकि यह आकर्षण अनवरत रहता है, अतएव निश्चित रूप से उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है। और अंत में कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति, वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रं तत्पाद सरिदं यथा। अंत में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी के, वासुदेव कथा प्रश्न, मैं बहुत प्रसन्न हूं परीक्षित कि तुमने ये प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी जो प्रश्न है, तीन प्रकार के लोगों को पवित्र करता है, पुरुषां स्त्रीं पुनाति ही, वक्तारं, जो वक्ता है, जो कृष्ण कथा कह रहा है वो शुद्ध हो जाता है, पृच्छकम, जिसने प्रश्न पूछा वो शुद्ध हो जाता है, और श्रोत्रम, जो श्रोतागण है वो, अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाया और सारे कुरुक्षेत्र के जो सैनिक खड़े थे सब लोगों ने सुना। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, सुखदेव गोस्वामी ने बोला और सारे लोग जो एकत्रित ऋषि मुनिगण थे उन लोग सब ने सुना। और इसी तरह से इस परंपरागत कोई प्रश्न पूछता है, उसके उत्तर में कथा होता है और सब श्रोतागण सुनते हैं, बोले तीनों शुद्ध हो जाते हैं। कैसे? तत्पाद सरिदम यथा, भगवान के चरण कमल से निकली हुई जो गंगा है तीनों लोकों को उद्धार करती है, उच्च लोक, मध्य लोक और पाताल लोक। पर विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं, सबसे ज्यादा फायदा इन तीनों में से किसको होता है, कोई बता सकता है सुनने वालों को, इनका क्या? अच्छा, तीन प्रकार के लोग, वक्ता, पृच्छकम, जिसने प्रश्न पूछा और जब सब लोगों ने सुना। अब कितने लोग कहते हैं कि सुनने वालों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, हाथ उठाइए, आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब 1/3, एक तिहाई लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा फायदा सुनने वालों, पूछने वालों को फायदा किसको लगता है सबसे ज्यादा होता है, बेचारा पूछने वाला। आपको कहना है कि अर्जुन को फायदा नहीं हुआ, उसने तो प्रश्न पूछा। और कितने लोगों को लगता है कि वक्ता जो बोल रहा है उसको सबसे ज्यादा फायदा होता है, मतलब दूसरे लोगों का कहना है कि किसी को फायदा नहीं होता है। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर का कहना है, जिस ऑर्डर में नाम बताया गया है सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होता है, सबसे ज्यादा फायदा होता है वक्तारं, जो वक्ता है उसको सबसे ज्यादा कृष्ण कथा का फायदा होता है, फिर पृच्छकम, जिसने पूछा उसको फायदा होता है, अगर ध्यान से पूछा हो ध्यान से सुन रहा हो, और श्रोता, इन दैट ऑर्डर। अब क्यों मत पूछिए, पर मैं सोच रहा था, क्योंकि अगर मुझे यह बोलना है तो कम से कम 2-3 घंटा पहले मैं तैयारी करना पड़ेगा मुझे, तो पहले से मैं सोच रहा हूं ये है और थोड़ा उसका आस्वादन किया मैंने, उसके बाद यहां बोला, बोलते वक्त भी मैं स्मरण हो रहा है। पर जो एक बार प्रश्न पूछ लिया, हो सकता है प्रश्न पूछ तो लिया पर बाद में वो थोड़ा इधर उधर ध्यान उसका चला गया हो, और जो सुनने वाला उसके ऊपर निर्भर है कितना देर सोया था, कम से कम वक्ता सो तो नहीं सकता शायद। ये भौतिक रूप से, पर विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर का कहना है, वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रं तत्पाद सरिलं यथा। पर एक चीज निश्चित है, यह सबको फायदा होने वाला है,
जो यहां आके सो भी गया ना, कुछ तो तरंगे अंदर जाएगी और हृदय में प्रवेश करेगी। तो इस तरह से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, और शायद अगले बार हम चर्चा करेंगे दशम स्कंध के आने वाले श्लोकों में कि किस प्रकार सूत गोस्वामी इसके उत्तर में, सुखदेव गोस्वामी इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीला की शुरुआत करते हैं। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदी श्री कृष्ण।